समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में होंगे मुख्य समाचार। चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर और याद करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिवस। और आज डेटलाइन में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैथ 2.0 डे। इसके बारे में हम बात करेंगे, क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जा रहा है और इसका इतिहास, इसका महत्व क्या है। आज के इस अंक में मैं हूं जागृति शर्मा और मेरे साथ हैं सायरा मुस्तफा। सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार जागृति, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हू हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा, वेयर ऑफ कोर्स जागृति हैज ऑलरेडी आउटलाइन टू व्हाट टू लुक फॉरवर्ड टू इन टुडेज शो। एंड हज़्म दस्तूर हम लोग देश की परिक्रमा पे भी निकलेंगे, विल गो टू different parts of our country and see what special interesting stories our correspondents have from there. All of that in the next roughly half an hour, but first Jagriti, let's start with the headlines. Prime Minister Modi leaves for three-day visit to Russia and Austria, says these visits will be a wonderful opportunity to deepen ties with the two countries.
Hemant Soren sarkar ne Jharkhand Vidhan Sabha mein vishwas mat jeeta.
Madhya Pradesh cabinet expanded, Ram Nivas Rawat takes oath as minister. Supreme Court says sanctity of NEET UG exam compromised. Cancellation of exam should be the last resort, says SC bench. Heavy rain disrupts normal life in Mumbai. IMD issues orange alert for next 24 hours and predicts high tide this afternoon.
और टेनिस में स्पेन के कार्लोस अल्काराज और इटली के जानिक सिनर विंबलडन के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे।
And yes, it's time for Dateline India. Jagriti has already told that today our topic is Math 2.0 Day. In fact, math ke naam se hi bachpan se hi hum log ko jo hai dar sawar ho jata tha, isn't it Jagriti? That was one subject that we all feared.
और हमें ही नहीं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और आज भी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें मैथ्स के नाम से डर लगता है, चाहे अनचाहे। बल्कि गणित का जो उपयोग है वो हम अपने जीवन में लगभग रोज करते हैं। एज अ सब्जेक्ट हमें उसे डर लगता है, लेकिन उसका यूज हमारी जिंदगी में हर रोज होता है। और बहुत से लोग गणित को न समझ पाने के कारण ही उसे ज्यादातर ऐसा होता है कि नापसंद करते हैं। लेकिन जब हमें ये एहसास होता है कि गणित यानी कि मैथ्स कितना मनोरंजक हो सकता है, तो ये बेहद आसान हो जाता है। और इसीलिए वर्ष 2009 में लोगों को गणित और प्रौद्योगिकी में रुचि लेने के इरादे से मैथ्स 2.0 डे बनाया गया था, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
Yes, it is a unique celebration that brings together math and technology, highlighting their combined power to improve our world. Math is one of the toughest subjects to pass in school, and due to its high level of difficulty, kids start disliking math.
बिल्कुल, ये दिन गणित और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के कॉम्बिनेशन के माध्यम से उन उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने के लिए बनाया गया है जो इनके कॉम्बिनेशन से हमें मिलती हैं। गणित 2.0 दिवस का अगर हम अर्थ देखें तो इसे इस तरह से बताया जा सकता है कि गणित को यानी मैथ्स को नए और विशेष तरीके से समझाया जाए, जिससे लोगों की गणित के प्रति जो रुचि है और समझ है उसमें सुधार हो सके। और इस दिन का उद्देश्य गणित को सीखने और समझने में उत्कृष्टता लाना है।
Yes, it's a reminder that math is not just a subject in school, but also a foundation for countless innovations and conveniences we enjoy today. And well, so that is today, 8th of July. Take a moment to appreciate how Math 2.0 has simplified and enriched our lives, making everything from digital communication to architectural design more elegant and efficient.
और अगर हम इसके इतिहास पर नजर डालें तो मैथ्स 2.0 दिवस की शुरुआत साल 2009 में हुई थी, जब मैथ इंटरेस्ट ग्रुप ने इसकी शुरुआत की। इस ग्रुप ने टेक्नोलॉजी में गणित के इंटीग्रेशन को बढ़ावा देने के लिए गणित के प्रति उत्साही लोगों को इकट्ठा किया इनका उद्देश्य फाइनेंस और इंजीनियरिंग से लेकर चिकित्सा और सामाजिक विज्ञान तक के क्षेत्रों में इसकी आवश्यक भूमिका को पहचानते हुए गणित की संभावनाओं की ऑनलाइन खोज को प्रोत्साहित करना था.
Yes, in fact, math has contributed to several discoveries for centuries. For instance, Pythagoras created the Pythagorean theorem that helped in studying the planets. In the 17th century, Johannes Kepler used mathematical calculations to figure out the movement of comets and planetary orbits. And Isaac Newton also used calculations to prove the theory of gravitational attraction in the 1680s. And most interesting is one of the greatest discoveries that may have helped in ending the Second World War. That was also made with the use of math. Well, Alan Turing, an English mathematician, formulated several difficult calculations to create a machine that could break German military codes. He later developed theoretical computer science, including algorithms and artificial intelligence. This was followed by the creation of a formula to forecast the weather by American mathematician and meteorologist Edward Norton Lorenz in the mid-1950s. Alan Turing ka jo Morse code hai, that was, of course, very beneficial in decoding the German military codes.
जी हाँ, और दुनिया भर में स्कूल, कंपनियां और गणित के प्रति उत्साही जो लोग हैं वो इस दिन का उपयोग उन गतिविधियों में शामिल होने के लिए भी करते हैं जो गणित की जो ब्यूटी है, जो उसकी सुंदरता है और तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाने में इसकी अपरिहार्यता को प्रदर्शित करती है.
And well, there are a lot of things that you can do to make math interesting. Well, you can whip up some math munchies. Of course, baking is delicious math that you can eat. Yes, by measuring the ingredients is a tasty way to explore fractions. The challenge is that, of course, can you double a cookie recipe or cut it in half without a calculator? If you want, you can chalk it up to math. Well, with sidewalk chalk, you can draw shapes or numbers outside your home, play a game where you call out a shape or number for your kids to jump to. And of course, you can break out the board and card games that require strategy and a bit of math. From Rummy Cup to Uno, it's a fantastic way to enjoy numbers and patterns while spending quality time with friends and family. And thank the math magicians. Take a moment to appreciate those who use math daily in their jobs. From architects to engineers, these unsung heroes make sure that our world runs smoothly.
जी हाँ, और आपने बहुत सारी चीजें बताई हैं कि किस तरह से आप इस दिन को सेलिब्रेट कर सकते हैं, किस तरह से मैथ्स को अपने लाइफ में आप सेलिब्रेट कर सकते हैं. तो इसके लिए आप शेप सफारी पर भी निकल सकते हैं, अपने घर या पड़ोस में आकृतियों की तलाश करें, जो शेप होती है उनकी तलाश करें. आप कितने वृत्त, वर्ग या त्रिभुज देख सकते हैं, ये आपके आसपास की दुनिया में ज्यामिति देखने का एक मजेदार तरीका हो सकता है. आप साइडवॉक गणित गैलरी में अपना जो आपका रास्ता है उसे गैलरी में बदल सकते हैं. गणितीय समीकरण बनाने या प्रसिद्ध गणितज्ञों का चित्र बनाने के लिए आप चौक का उपयोग करें. राहगीरों को उनके चलने से शिक्षा की खुराक मिलती है.
एंड देयर आर सम फन फैक्ट्स टू शेयर विद आवर लिसनर्स इफ वी टॉक अबाउट ऑड नंबर्स. वेल, डू यू नो दैट ऑल ऑड नंबर्स हैव द लेटर ई इन देम? Yes, I'm sure now you would start counting and see if there's an E in them or not. The missing number, well, zero is not represented in Roman numerals. Also, from 0 to 1000, well, all numbers from 0 to 999, they don't have the letter A in them. Can you imagine? A sabse zyada common letter hota hai, but in numbers we don't have it. And well, the origins of the calculator, they are linked to the abacus. Interesting dates about Math 2.0 is, of course, 2024, July 8 will be a Monday. In 2025, July 8 will be a Tuesday. In 2026, July 8 will be a Wednesday. July 8 in 2027 will be a Thursday. And 2028, July 8 will be a Saturday.
और इसके बाद चलते हैं अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानते हैं कि उनके पास क्या खास है. और सबसे पहले हम चलेंगे महाराष्ट्र, जहां पर आपातकालीन चिकित्सा स्थितियों में एम्बुलेंस सेवा डायल 108 बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। लोक स्वास्थ्य विभाग की इस सेवा को राज्य के नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हुए लगभग 10 वर्ष पूरे हो गए हैं और इस अवधि के दौरान 108 एम्बुलेंस सेवाएं मरीजों के लिए जीवन रक्षक का कार्य कर रही हैं। इस सेवा ने राज्य में अब तक 1,03,446 मरीजों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की हैं। आइए इस सेवा के बारे में और अधिक जानते हैं हमारे पुणे संवाददाता से।
यदि कोई बीमार है, दुर्घटना हुई है या चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है तो 108 एम्बुलेंस सेवा के लिए तैयार है। 108 आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक निःशुल्क टेलीफोन नंबर है। ये सेवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लोक स्वास्थ्य विभाग और भारत विकास समूह के सहयोग से राज्य के विभिन्न हिस्सों में चलाई जाती है। ये सेवा जनवरी 2014 में महाराष्ट्र में शुरू की गई थी। वर्तमान में राज्य में 937 एम्बुलेंस है और सभी एम्बुलेंस पल्स ऑक्सीमीटर मेडिकल ऑक्सीजन सिस्टम से सुसज्जित है। ये देश में 2400 घंटे डॉक्टरों और आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं वाली एकमात्र प्रणाली है। राज्य में अब तक 1,03,446 मरीजों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा इसने प्रदान की है। इस जीवनदायिनी एम्बुलेंस सेवा ने राज्य में कहीं से भी मोबाइल या टेलीफोन से 108 नंबर डायल करने पर चिकित्सा आपातकाल के मामले में मरीजों को मुफ्त और समय पर एम्बुलेंस सेवाएं प्रदान की जाती है। इसके अलावा राज्य में नासिक में महाकुंभ मेले में, पंढरपुर जिले के वारी में और गणपति उत्सव के दौरान मरीजों की सेवा की है। इस सेवा को बेहतर बनाने या सेवा की संतुष्टि के संबंध में नागरिकों की प्रतिक्रिया भी दी जाती है। राज्य में सेवा के संबंध में 6,74,542 प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई है। इनमें 81,155 बहुत अच्छे, 5,70,594 उत्कृष्ट तथा 22,793 अच्छे प्रकार के हैं। राज्य में 108 एम्बुलेंस सेवा संजीवनी की तरह है। इस सेवा से खासकर गरीब मरीजों को समय पर इलाज मिलने में मदद मिली है। कोरोना काल में ये सेवा सबसे महत्वपूर्ण साबित हुई। परिक्रमा के लिए मनोज क्षीरसागर, पुणे।
From Pune, in our journey of Parikrama, we head towards the down south to Vishakhapatnam. And dear listeners, if you had probably heard Prime Minister Modi's Mann Ki Baat, toh aapko yaad hoga ki Pradhan Mantri ne zikr kiya tha Araku Coffee ka. Araku Coffee has recently gained significant attention, especially after Prime Minister Modi highlighted its uniqueness and quality in Mann Ki Baat program. We have more details from our correspondent.
Coffee has become an inseparable part of our life. Most of the Telugu people must be used to Araku coffee. But now Araku coffee has become more popular not only in Telugu region but all over the world with its unique flavor and taste. Generally, these Araku coffee plantations are cultivated in Alluri Sitaramaraju district of Andhra Pradesh. Mostly tourists who travel to northern parts of Andhra Pradesh through Araku and Paderu ghat roads, they have come across these coffee gardens. These coffee plants grown in the shade of tall silver oak trees with pepper plants intertwined with them. Why this particular region only supposed to grow these plants? Because this particular region where there is no much sunlight, but the soil is acidic in nature and mostly water stagnant. That's why this Araku coffee got received geographical indication in 2019. The coffee is produced by tribal communities using organic methods like organic manures, green manuring and organic pest management. Here particularly these tribal people are only cultivating these gardens by helping each other. The number of people who practicing this coffee cultivation also increases day by day because the demand for this Araku coffee increases worldwide and also bringing good profits. When it comes to harvesting, coffee plants in between August and September, tribal people who collected these coffee fruits later processed these fruits into coffee beans. Then it came to you in the form of cup of coffee. So we relax and start your early morning with Araku coffee. Satyanarayana for Parikrama from Visakhapatnam.
और विशाखापट्टनम से अब आते हैं नागपुर की ओर, जहां पर मॉनसून में महत्वपूर्ण जब हो जाती है साफ सफाई, तो किस तरह से वहां पर साफ सफाई हो रही है। नागपुर के लोगों ने एक बार फिर से जन भागीदारी के महत्व को रेखांकित किया है और एक तालाब की सफाई के कार्य में योगदान दिया है। इस सफाई से बाढ़ प्रबंधन में भी सहायता मिलेगी। आइए जानते हैं हमारी संवाददाता से इस रिपोर्ट में।
नागपुर नगर निगम ने जनभागीदारी के माध्यम से शहर की प्रसिद्ध अम्बाजरी झील में दिन ब दिन बढ़ रहे जलपर्णी अर्थात वाटर हाइसिंथ को हटाने का महत्वाकांक्षी निर्णय लिया। इस निर्णय पर नागपुर की जनता ने स्वयं स्फूर्ति से आगे आकर श्रमदान किया। यह अभियान अगले कुछ दिनों तक लगातार जारी रहेगा। नागरिकों द्वारा दिए गए जबरदस्त प्रतिसाद के चलते मनपा आयुक्त एवं प्रशासक डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने नागपुर की जनता को धन्यवाद किया है। मानव श्रृंखला बनाकर और एक दूसरे का हाथ पकड़कर जलपर्णी को तालाब से बाहर निकाला गया। सैकड़ों जनशक्ति और 10 पोकलेन जेसीबी मशीनें 20 टिप्पर पानी की नावें वाटर जेट मशीन इत्यादि के मदद से यह कार्य किया गया। जनभागीदारी से किए गए इस कार्य ने यकीनन एक मिसाल कायम की है। बाढ़ प्रबंधन, पानी का यथायोग्य बहाव एवं पानी जमने की समस्या हेतु यह कार्य यकीनन मददगार साबित होगा। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी नागपुर से धनंजय वानखेड़े के साथ मैं हिमांगी कुलकर्णी।
And in our journey of Parikrama, our last stoppage is Kerala. The Kerala government has decided to formulate special guidelines on steps to be taken in the wake of recent deaths following infections caused by amoebic meningoencephalitis, which is a free-living amoeba found in contaminated waters. The latest death was reported of a 12-year-old boy who succumbed to the infection on the 3rd of this month in Kozhikode. Our Kochi correspondent has filed this report.
There have been 3 deaths reported in the state during the past 2 months due to the rare but fatal infection caused by primary amoebic meningoencephalitis. Victims were children below 15 years of age. Unhygienic and stagnant water resources and high temperatures are considered factors contributing to the increasing instances of death due to the infection. The amoeba was first detected in Alappuzha in 2016. It was later reported in Malappuram, Kozhikode and Thrissur. The infection is caused by Naegleria fowleri, an amoeba that thrives in warm freshwater lakes, ponds and rivers and poorly maintained swimming pools. The infection happens when people go for a swim. The amoeba enters the body through the nose and reaches the brain where it destroys the tissues. A high-level meeting chaired by Chief Minister Pinrai Vijayan in Thiruvananthapuram recently issued directions to keep water resources clean. The meeting also suggested that there should be proper chlorination of swimming pools and children should be careful when entering water bodies. Holding the nose or wearing a nose clip while jumping or diving are some of the other steps suggested to avoid the infection. Raj Mohan, Akashwani News, Kochi.
And now it's time for Azadi Ka Safar.
Freedom fighter Poosapati Sanjeevi Kumaraswamy Raja, who was born on the 8th of July 1898 at Rajapalayam, Tamil Nadu. He served as the last Chief Minister of Madras Presidency from the 6th of April 1949 to the 26th of January 1950 and first Chief Minister of Madras State from the 26th of January 1950 to the 10th of April 1952.
Rajap joined the Indian National Congress and he took a prominent part in panchayat organizations and local board administration. He served as the president of Rajapalayam Union, the Panchayat Court, and the District Board of Ramanathapuram.
The lives and writings of Annie Besant and Satyamurthy had great influence on his mind and character in his formative years. Raja met Mahatma Gandhi for the first time in 1919 and was deeply impacted.
He was elected as the leader of Madras Congress Legislature Party in 1939 and took oath as the Premier of Tamil Nadu on April 6, 1949. He also served as the Governor of Odisha. He donated his house for starting an institution of culture called Gandhi Kalai Mandiram. Rajap continued to work for the betterment of people till his death on the 16th of March, 1957. We salute the great nationalist.
We also remember freedom fighter Babu Banarasi Das, who was born on the 8th of July 1912 in Bulandshahr district, Uttar Pradesh. He joined the independence struggle in his youth and was jailed several times by the British for his participation in the non-violence movement of Mahatma Gandhi.
After independence, he joined politics and rose to become the 11th Chief Minister of Uttar Pradesh. We salute the great Indian.
We remember independence activist Lakhana Votra, who died on the 8th of July, 1945. A resident of Koraput, Odisha, Votra was involved in the political activities against the colonial rule during the non-cooperation movement days. He actively participated in the Quit India agitation in Odisha and was arrested.
Lakhana Votra and other demonstrators were put behind bars in Nabarangpur sub-jail. Votra suffered on account of the unhygienic living conditions and lack of medical care. He and other political prisoners were shifted to the Koraput district jail, where Lakhana Votra died on the 8th of July 1945. We salute the great martyr.
We also remember martyr Hira Singh, who was born on the 8th of July 1818 in district Kota, Rajasthan. He was a Risaldar in the Kota State Army and participated in the military and civil uprising against the British and the Maharao of Kota State during the First War of Independence in 1857. He joined the freedom activists who attacked the political agency at Kota on the 15th of October 1857. He also participated in the siege of Kota Fort in November 1857. Hira Singh was killed while fighting against the troops of the Maharao of Kota. We salute the brave nationalists.
Time for business news now. Indian stock market benchmarks closed flat. The 30-share index, Sensex, opened with a loss against its previous close and traded in the red for most part of the session. Eventually, the index closed 36 points or 0.05% lower at 79,960. Nifty, on the other hand, started the day with marginal gain against its previous close. However, at close, Nifty too declined marginally to end at 24,320. In the global crude market, oil prices slid today after rising for 4 weeks. Brent crude was shown 82 cents to trade at $85.72 per barrel, while WTI crude is trading at $82.23 per barrel when reports last came in. At multi-commodity exchange, gold for August contract is trading at 72,711 rupees per 10 grams, while silver for September contract is trading at 93,421 rupees per kg when reports last came in. What about the news from the world of sports, Jagruti?
जी हाँ, बात करते हैं विम्बलडन टेनिस टूर्नामेंट की, जहां पर पुरुष सिंगल्स में मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी जैनिक सिनर कल क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए. अल्कराज ने फ्रांस के उगो हम्बर्ट को 4 सेट में 6-3, 6-4, 1-6 और 7-5 से हराया, जबकि सिनर ने अमरीकी प्रतिद्वंद्वी बेन शेल्टन को 2 घंटे 9 मिनट में 6-2, 6-4, 7-6 से हराया. चैंपियनशिप में 7 बार के चैंपियन और दूसरी वरीयता प्राप्त नोवाक जोकोविच आज रात डेनिस होलगर रून से मुकाबला खेलेंगे. वहीं चौथी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव 13वीं वरीयता प्राप्त अमरीकी टेलर फिट से मुकाबला करेंगे. महिला सिंगल्स में पूर्व चैंपियन एलेना रायबाकिना का मुकाबला 17वीं वरीयता प्राप्त अन्ना कलिंस्काया से होगा.
And in athletics, Kenyan middle distance runner Faith Kipyegon broke her own 1500-meter world record at the Paris Diamond League yesterday. Kipyegon clocked 3 minutes 49.04 seconds, taking 0.07 seconds and improved her world record that she had set last year in Florence, Italy. Her early pace was swift as she covered first 800 meters in 2 minutes 4 seconds. She increased her pace to cover the third lap in 60.8 seconds and sailed to win in record time. She's already a double Olympic 1500 meter champion and has 3 world titles to her name.
और अब याद करते हैं उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन. और सबसे पहले हम याद कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के मशहूर हास्य अभिनेता सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी को उनकी पुण्यतिथि पर. सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी को जगदीप के नाम से जाना जाता था. अपने हास्य अभिनय से उन्होंने दर्शकों में काफी लोकप्रियता हासिल की. उन्होंने करियर की शुरुआत बाल कलाकार के रूप में फिल्म अफसाना से की. जगदीप ने 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया. 1975 में आई मशहूर फिल्म शोले में सूरमा भोपाली के किरदार से उन्होंने खूब चर्चाएं बटोरी।
Today we are also remembering Revati on her birthday today, an actress and director known for her works predominantly in Tamil and Malayalam cinema, in addition to Telugu, Hindi and Kannada films. She was one of the most successful leading actresses of South Indian cinema and has won several accolades, including 3 National Film Awards, 6 Filmfare Awards of South, and she has also won the Kerala State Film Award for Best Actress for her performance in Bhutakalam in 2022. And we have a very beautiful song from one of Revati's films. Let's listen to it.
प्रसिद्ध भारतीय अंग्रेजी लेखक राजा राव की आज पुण्यतिथि है। 8 नवंबर 1908 को कर्नाटक के हसन में जन्मे राजा राव के सिर से महज 4 साल की उम्र में ही मां का आंचल छिन गया, जिसने उनके जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। माता के अभाव और अनाथ होने का कहीं न कहीं एक कारण था कि उनका मन आवर्ती विषयों में नहीं लगता था। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। एक राष्ट्रवादी होने के साथ साथ राजा राव एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और राष्ट्रवाद उनके कई उपन्यासों का प्रमुख विषय रहा। और आज ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू बनारसी दास की जयंती है। 15 वर्ष की आयु में अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले बाबू बनारसी दास का स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान रहा। 1979 में बनारसी दास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और अपने मुख्यमंत्री काल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिचय ग्रंथों का उन्होंने प्रकाशन कराया। बांग्ला साहित्यकार विष्णु डे की आज जयंती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित विष्णु डे के कविता संग्रह स्मृति सत्ता भविष्यत के लिए उन्हें 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिकतावाद के युग में विष्णु डे ने बांग्ला भाषा में कवि लेखक और शिक्षाविद के रूप में कार्य किया। उन्होंने अपनी कविताओं में संगीत गुणवत्ता की मान्यता पाई और बुद्धदेव बसु तथा समरसेन जैसे बंगाली कवियों की टैगोर पीढ़ी का वे हिस्सा बने। उनके साहित्य में एक कवि के एकांत संघर्ष, मानवीय गरिमा की खोज, उखड़ी पहचान के संकट की झलक मिलती है। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
And talking about another Bengali poet, writer, who was awarded the Gyanpith Award, yes, today we are remembering Subhash Mukhopadhyay on his death anniversary. Also known as the Podhatik Kobi or Foot Soldier Poet in Bengali literature, Subhash's best known poems in English translation titled as Days Breaking was published in 2014 by Anjan Basu, a Bangalore-based writer and critic. The book includes a rather detailed introduction to the poet's work as well, and he was awarded the Gyanpith Award in 1991. Like his contemporary Shukant Bhattacharya, Mukhopadhyay developed strong political beliefs at an early age. He was deeply committed to the cause of social justice and was active in student politics through his college years.
हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, सशक्त कथाकार, नाटककार और आलोचक गिरिराज किशोर की आज जयंती है। गिरिराज किशोर के समसामयिक विषयों पर विचारोत्तेजक निबंध कई पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाशित होते रहे हैं। उन्होंने बाल साहित्य में भी योगदान दिया है। इनका उपन्यास ढाई घर काफी लोकप्रिय हुआ। 1991 में प्रकाशित इस कृति को 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गिरिराज किशोर का लिखा हुआ पहला गिरमिटिया उपन्यास महात्मा गांधी के अफ्रीका प्रवास पर आधारित था, जिसने इसे इन्हें विशेष पहचान दिलाई। साहित्य और शिक्षा के लिए उन्हें पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया।
Today we are also remembering Neetu Singh on her birthday today, and of course known as a very bubbly actress of yesteryears, she paired with her husband Rishi Kapoor in most of her films.
जी हाँ, 8 साल की उम्र में बेबी सोनिया नाम से उन्होंने अभिनय शुरू किया था और नायिका के रूप में मुख्य भूमिका में उनकी पहली फिल्म रही थी 1973 में आई रिक्शा वाला। उनकी एक फिल्म से गाना सुनाते हैं।
होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता
और आज प्रिंस ऑफ कोलकाता, ऑफ साइड के भगवान, बंगाल टाइगर जैसे नामों से मशहूर पूर्व कप्तान सौरव गांगुली अपना जन्मदिन मना रहे हैं। भारतीय फैंस के चहेते दादा, भारतीय क्रिकेट में सबसे सफल कप्तान रही हैं। और सायरा, अब समय हो चला है अपने श्रोताओं से अनुमति लेने का, तो कार्यक्रम परिक्रमा में अनुमति दीजिए जागृति और सायरा को कार्यक्रम समाप्त करने की। नमस्कार।